देव एकदम से रुक जाता है और गुस्से में पलटकर आस्तिक को देखने लगता है। तो आस्तिक मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहता है, पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। भले ही ये दोस्ती, इज्जत और हमदर्दी के साथ दिल में रहे, लेकिन राहत जरूर है। देव ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला जाता है। आस्तिक मुस्कुराता हुआ उसे जाते हुए देखता रह जाता है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और आस्तिक शादी के मंडप पर बैठ गया था। पंडित जी ने कन्या को लाने के लिए कहा। मीरा और आशा जी अरुणिमा को लेकर आती हैं और उसे आस्तिक के पास बिठा देती हैं। आस्तिक अरुणिमा को देखकर इतना खुश था कि उसका मन कर रहा था अभी अरुणिमा को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन उसने कुछ पल और इंतजार करना सही समझा। एक एक करके मंत्र पढ़े जा रहे थे और इस बार शादी में उन दोनों की मर्जी और सहमति दोनों शामिल थी। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए आस्तिक के साथ शादी की हरेक रस्म निभाई। आस्तिक ने अरुणिमा की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा और उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया। सात फेरों के साथ उनकी शादी संपन्न हो गई। आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर सारे मेहमान एकदम से मुस्कुराने लगे और कुछ शर्माने लगे। आशा जी और ब्रजेश जी के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। मीरा और देवी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे, लेकिन आस्तिक ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अरुणिमा को अपनी गोद में उठाकर मेंशन की तरफ ले जाता है। वो सीधे अरुणिमा को कमरे में ले जाकर उसे बेड पर बिठा देता है। अरुणिमा के पास नीचे उसके घुटनों के पास बैठते हुए आस्तिक ने अरुणिमा को मुस्कुराकर देखना शुरू कर दिया। अरुणिमा उसे ऐसे देखकर हैरान हो गई थी। उसने कहा, क्या देख रहे हो? आस्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, देख रहा हूँ कि मेरी बीवी बनने के बाद तुम और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उसकी ये बात सुनकर अरुणिमा की मुस्कान और गहरी हो जाती है। आस्तिक धीरे धीरे अरुणिमा के होंठों के पास आता है और अरुणिमा शिद्दत से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आस्तिक ने अरुणिमा के होंठों पर अपने होंठ रखे और धीरे धीरे उसे किस करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे अरुणिमा को बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर झुकने लगता है। लेकिन इस बीच आस्तिक ने अरुणिमा की हालत का पूरी तरह ध्यान रखा। वो उसके ऊपर अपना वजन नहीं छोड़ रहा था और अरुणिमा को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। अरुणिमा एकदम से आस्तिक के किस में इन्वॉल्व हो जाती है और वो भी आस्तिक को किस बैक करने लगती है। आस्तिक के हाथों ने अरुणिमा के बदन को सहलाना शुरू किया, जिससे अरुणिमा और ज्यादा गहरी सांसें लेने लगी। एक एक करके आस्तिक ने अरुणिमा की ज्वेलरी अलग करना शुरू कर दिया, जिससे अरुणिमा की आंखें बंद होकर उसकी सांसें और गहरी हो गईं। अरुणिमा की प्रेगनेंसी के बाद आस्तिक और अरुणिमा सिर्फ एक बार ही इंटीमेट हुए थे। उसके बाद से इतना लंबा समय उन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को बाहों में लेकर और किस करके ही गुजारा था, लेकिन शायद आज वो दोनों इस पल में बहक रहे थे। आस्तिक ने अपनी शेरवानी उतार दी और अरुणिमा की साड़ी को उसके कंधे से अलग कर दिया। वो अरुणिमा के सीने पर अपने होंठ रखता है और उसे बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है। अरुणिमा की गहरी सांसें आस्तिक को और ज्यादा अधीर बना रही थीं। धीरे धीरे आस्तिक अरुणिमा के कंधे पर सहलाते हुए उसकी कमर के नीचे आता है और एक पल के बाद वो रुक जाता है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और अरुणिमा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी, जैसे वो आस्तिक को और करीब महसूस करना चाहती हो। लेकिन आस्तिक एकदम से उसके ऊपर से हट जाता है। अरुणिमा ने जब आस्तिक को खुद से दूर जाता हुआ महसूस किया तो वो एकदम से आंखें खोलकर बेचैनी से आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक ने अपना सिर झटका और तेजी से सांस लेते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं अरुणिमा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अरुणिमा बेचैन होकर बैठ जाती है। उसने आस्तिक का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ आस्तिक, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? आस्तिक ने अरुणिमा के चेहरे पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अभी ये नहीं कर सकता। अभी हमें दोनों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अरुणिमा ने तुरंत कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हम सेफली रिलेशन बना सकते हैं और मैंने महसूस किया है कि तुम अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। हम नॉर्मली तो लव मेक कर सकते हैं ना? आस्तिक हल्की मुस्कान के साथ अरुणिमा के पास आता है और उसके माथे को चूम लेता है। उसने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें और बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जानता हूँ कि डॉक्टर ने कहा है कि सेकंड ट्राइमेस्टर तक रिलेशन बनाना सेफ है, लेकिन साथ ही डॉक्टर ने यह भी कहा है कि ये प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारी दूसरी बार प्रेग्नेंट होना ही एक चमत्कार है। ऐसे में हम रिस्क कैसे ले सकते हैं, जबकि डॉक्टर ने साफ कहा है कि इसके बाद तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं है। अरुणिमा का चेहरा एकदम निराशा से भर जाता है और उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इस प्रेगनेंसी के बाद 0% चांस है कि अरुणिमा फिर से प्रेग्नेंट हो पाए। उनके लिए यही बच्चा उनकी पूरी दुनिया होगा। अरुणिमा को निराश देखकर आस्तिक ने उसके गालों पर अपने होंठ रखकर किस किया और कहा, तुम उदास क्यों हो रही हो? मैं खुद को रोक जरूर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए, जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। अरुणिमा, क्या तुम अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकती? अरुणिमा ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया, बिल्कुल, मैं हमारे बच्चे के लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। आस्तिक ने सोचते हुए कहा, पूरी जिंदगी नहीं, बस 4 महीने और। एक बार हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम्हें रात में सोने नहीं दूंगा। अरुणिमा एकदम से मुस्कुरा पड़ी, लेकिन फिर बोली, पर आस्तिक आज तो हमारी सुहागरात है ना। आस्तिक ने शरारती नजरों से उसे देखकर कहा, हाँ तो मानेंगे ना सुहागरात। अरुणिमा की आंखें बड़ी हो गईं और आस्तिक ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। उसने अरुणिमा को अपने करीब कर लिया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और आस्तिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पूरी रात उसे प्यार से सहलाता रहा, जिससे अरुणिमा सुकून से उसकी बाहों में सो गई। इतना ख्याल आस्तिक ने अरुणिमा का शादी से पहले नहीं रखा था जितना कि वो शादी के बाद रख रहा था। जैसे जैसे अरुणिमा की प्रेगनेंसी के दिन नजदीक आ रहे थे, उसके नखरे और बढ़ते जा रहे थे और आस्तिक उसके सारे नखरे बहुत नजरों से उठा रहा था। अब अरुणिमा की डिलीवरी को बस कुछ ही दिन रह गए थे। ब्रिजेश जी को बिजनेस भी संभालना था, इसलिए वो बेंगलुरु वापस चले गए थे, लेकिन आशा जी इस वक्त अरुणिमा के साथ थी। वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आस्तिक इस समय लाइब्रेरी में था और अपनी किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में व्यस्त था। अरुणिमा सोफे पर बैठी हुई सेब खा रही थी और अपने सूजे हुए पैरों को देख रही थी। उसने एक ढीली ढाली नाइटी पहन रखी थी और उसका चेहरा गोलगप्पे जैसा गोल और प्यारा लग रहा था। आशा जी किचन से तेल लेकर आती हैं और अरुणिमा के पैरों के पास बैठकर उसकी मालिश करने लगती हैं। तभी एकदम से डोरबेल बजती है। अरुणिमा मन ही मन हैरान हो जाती है, इस वक्त कौन आया होगा। नौकर दरवाजा खोलता है तो निशांत अंदर आता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अरुणिमा ने जब निशांत को देखा तो उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है। वो सोफे से खड़ी होती है और खुश होकर कहती है, निशांत तुम यहाँ। निशांत अंदर आता है, आशा जी को नमस्ते कहता है और फिर अरुणिमा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, कैसी हो अरुणिमा। अरुणिमा ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन निशांत खड़ा ही रहता है। उसने कहा, बैठूंगा जरूर और बहुत सारी बातें भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका और इतने दिनों तक तुमसे कॉन्टैक्ट भी नहीं किया।
अरुणिमा ने कहा, वही तो, मैं तुमसे इसी बात पर नाराज थी। एक तो मेरी शादी में भी नहीं आए और ऊपर से मेरे किसी फोन का जवाब भी नहीं दिया, कहाँ बिजी थे। निशांत मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी सारी नाराजगी और सारे सवालों के जवाब मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, तो बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। अरुणिमा हैरानी से उसे देख रही थी। आशा जी भी वहीं थी और काफी हैरान थी। उसी वक्त आस्तिक भी वहां आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कोई घर में आया है। वो अरुणिमा के पास आते हुए कहता है, कौन आया है। अरुणिमा मुस्कुराकर जवाब देती है, निशांत आया है। तभी एक बार फिर से दरवाजे पर आहट होती है। अरुणिमा और आस्तिक दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। आशा जी भी बहुत हैरान होती हैं। निशांत अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था, लेकिन वो लड़की व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। जब अरुणिमा ने उसे देखा तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, काव्या। निशांत काव्या की व्हीलचेयर लेकर अंदर आता है। काव्या अरुणिमा को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो अरुणिमा, कैसी हो। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, काव्या तुम्हें होश आ गया और तुम मेरे सामने हो, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। काव्या और निशांत अमेरिका में एक दूसरे से मिले थे और वहीं उन्हें प्यार हो गया था। निशांत जब काव्या को लेकर इंडिया आया और अपने पेरेंट्स से मिलवाया तो उन्होंने काव्या को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। निशांत ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर काव्या से शादी कर ली और इस शादी में अरुणिमा ने उसकी बहुत मदद की थी। उस वक्त अरुणिमा और निशांत अपनी कंपनी को स्टेबल कर रहे थे, इसलिए ज्यादातर निशांत का समय ऑफिस में ही बीतता था और अरुणिमा भी आस्तिक से अलग होने के बाद अपने काम पर ही फोकस करती थी। एक दिन काव्या अपनी कार लेकर किसी काम से बाहर जा रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। निशांत को जब ये खबर मिली तो वो बुरी तरह टूट गया, क्योंकि डॉक्टर ने काव्या का ऑपरेशन तो कर दिया था लेकिन वो कोमा में चली गई थी। अरुणिमा ने बहुत मुश्किल से निशांत को संभाला था। काव्या के ठीक होने के चांसेस बहुत कम थे, ये सुनकर सब हैरान रह गए थे, लेकिन फिर भी निशांत ने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि अरुणिमा ने उसे बहुत सपोर्ट किया था और उम्मीद देती रही कि काव्या एक दिन जरूर ठीक होगी।